तो भगवान वर्णन कर रहे थे कि जो विराट रूप है उसको बहुत ही उसको जो अर्जुन ने देखा तो वो बहुत ही दुर्लभ है बताया, लेकिन द्विभुज रूप उससे भी सुदूरदर्शन ऐसे कहते हैं और भी दुर्लभ है, और देवता लोग भी इसको देखने के लिए आकांक्षित करते हैं। और वो बोलते हैं भगवान, न हम वेदय न तपसा न दाने न चाज्यया शक्या एवं विदो दृष्टुम दृष्ट्वा नसी माम यथा। इन सभी चीज़ों से एक व्यक्ति ना हम वेदय
तो प्रभुपाद
बोलते हैं खोरे शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहाँ जाते रहे वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे, कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझ सकते हैं, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अपने श्लोक में बताया। तो श्लोक क्रमांक 44 54 ओके सॉरी। भक्त्यात्मनन्यया शक्या अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद पिछले श्लोक के बारे में बोलते हैं। कहाँ पर वो बोलते हैं ना पिछले श्लोक में ना हम वेदय न तपसा न चार्ज न दाने न चाजया ऐसे बहुत बार न आ गया ना। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं पिछले श्लोक में न शब्द पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवद्गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे ना शब्द का महत्व प्रबल वहाँ पर वर्णन कर। तो भक्त्या तो नहीं है, हे अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझ उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष पड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो सिर्फ भक्ति मार्ग से, वो भी कैसे भक्ति, अनन्य भाव से, जो अनन्य भक्ति से ही भगवान को तत्वतः मतलब प्रभुपाद यहाँ पर अनुवाद में क्या कह रहे, जैसे वो उनके अर्जुन के सामने खड़े हैं वैसे उनके द्विभुज रूप में तत्वतः उनको जान सकते हैं या उनको दर्शन कर सकते हैं। तो रहस्य को उनके ज्ञान के बारे में जो रहस्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है, इस श्लोक में वे इसे स्पष्टताया कहते हैं, जिसे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवद्गीता के केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग टाइम। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज में माता के गर्भ में उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजा वाले रूपों में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है न दार्शनिक चिंतन द्वारा, है ना। बार बार इन तात्पर्यों में क्या हो रहा है यहाँ पर प्रभुपाद जी वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो जो है चतुर्भुज रूप से वो देवकी के सामने प्रकट हो गए, फिर द्विभुज रूप में परिवर्तित हो गए। इसका जो रहस्य है कौन कोई भी नहीं समझ सकता है ना। लोग सभी लोग अन्य वैष्णव भी, अन्य वैष्णव संप्रदायों में भी उनको क्या है, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते। वो जो रहस्य है सिर्फ गौड़ी वैष्णव में दिखाए समझा जा सकता है। तो अनन्य भक्ति, अगर यहाँ पर स्पष्ट कहा गया ना तो कोई उन्हें देख सकता है ना इन बातों की रहस्य को समझ सकता है। इसके बाद में श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में पिछले श्लोक में क्या क्या बताए थे, वेदों को अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान देने से या उनका पूजा करने से, यज्ञ मतलब पूजा करने से हम लोग भगवान को देख नहीं सकते हैं, उनका दर्शन नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते हैं। ऐसे चार चीज़ों को बताया गया। उन्हीं चार चीज़ों को श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। उन्हीं चार चीज़ों को अनन्य भक्ति के साथ करेंगे या उन चार चीज़ों को अनन्य भक्ति में भाव से भाव में करेंगे तो भगवान को हम लोग समझ सकते हैं, ऐसे यहाँ पर वर्णन कर रहे। सो वेदों का अध्ययन करना, उन वेदों के बाद जो है उनका अध्ययन करना जहाँ पर सीधा भगवान कृष्ण का बारे में, सीधा भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन हुआ है, तो ऐसे तब हम लोग समझ सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत हो या भगवद्गीता हो या अन्य जैसे गोपाल थापानी उपनिषद वगैरह, जो जहाँ पर सीधा भगवान कृष्ण का वर्णन हुआ है तो वैसे उनको तब उनको समझ सकते हैं भगवान कृष्ण को। ना हम वेद और तपस्या, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं तपस्या का अर्थ है हमें क्या करना चाहिए, जन्माष्टमी और एकादशी, ऐसे आचार्यों के आविर्भाव थिरोभाव या अन्य भगवान के अवतार जो होते हैं उस दिन हम लोग व्रत को करते हैं तो उसको तपस्या कहते हैं, उपवास व्रत को करते हैं। तो ऐसे तपस्या करने से क्या हो जाएगा, हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। और दानेना आप भगवद्गीता में प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए या कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दान देना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे कि ये जो कृष्ण भावनामृत है ये सबसे बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी, हाईएस्ट, सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। इसके कारण इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें दान देना चाहिए, तो उससे हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। और उसके बाद इज्जेन मतलब भगवान को पूजा करना, आराधना करना। तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पर भगवान के विग्रह है, मंदिर में जाकर हमें विधि पूर्वक तो भगवान को सेवा करना चाहिए, तब क्या हो जाता है, तो हम लोगों को भगवान को समझने के लिए या दर्शन करने के लिए उनको यथारूप समझने के रहस्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो अंत में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो श्लोक हो, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिताय अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। तो इसका अर्थ है इस श्लोक में अनन्य भक्ति के बारे में वर्णन हुआ, जैसे गुरु के पर श्रद्धा रहता है वैसे, या कृष्ण जैसे कृष्ण में भगवान एक भक्त का श्रद्धा रहता है वैसे ही गुरु में जब जिसका श्रद्धा रहता है तो क्या हो जाता है, खतिताई अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, जो वेदों के जो मर्म है वो उनके ऐसे महात्मा के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, ऐसे भगवान। तो कह रहे ये श्वेता सरोपनिषद से है श्लोक। तो इस प्रकार और यहाँ पर अनन्य भक्त्या थनन्या शक्या तू तू शब्द आता है भक्त्या त्वा त्वा मतलब वो तू त्वा बन जाता है। तो तू शब्द का भी प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करें। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए है हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है ना प्रयुक्त की जा सकती न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। ऐसे है ना, ना बताई जा सकती है ना प्रयुक्त की जा सकती है ना ही कृष्ण को समझने के सफल हो सकती है अन्य कोई मार्ग। तो ऐसे तू शब्द का होता है। और श्रील प्रभुपाद अंत में वर्णन कर रहे कि जो चतुर जो द्विभुज रूप है वो भगवान के मूल रूप है, उनसे सभी अन्य भगवान के जो भी विस्तार होते हैं वो प्रकट होते हैं। उसके लिए शास्त्र प्रमाण बता रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद। तो पहले ब्रह्म संहिता से उल्लेख करते यश्चैक निश्वसित काल मतावलंब्य जीवन्ति लोममिलज जगदंडनाथ विष्णुर्महांस यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यश्चैक निश्वसित काल मतावलंब्य, यहाँ पर इस श्लोक में महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु उनके बारे में वर्णन आ रहा है। तो उनके श्वास से क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड भौतिक जगत में कितने भी ब्रह्मांड है वो बाहर निकलते हैं और वो श्वास अंदर लेने से क्या हो जाता है, सभी अंदर चले जाते। तो उनका ब्रह्मा जी के पूरा जीवन अवधि तक उनका श्वास लेना और बाहर छोड़ना होता है। तो ब्रह्मा जी जब वो श्वास बाहर छोड़ देते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ साथ ब्रह्मांड भी प्रकट हो जाता है, और जब वो अंदर ले लेते हैं तो ब्रह्मा जी का मृत्यु हो जाता है या ब्रह्मा जी इस जगत से चले जाते। ये महाविष्णु विष्णु और महान सयस्य कला विशेषो, तो वो महाविष्णु कौन है, वो भगवान कृष्ण के एक कला है। कला हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, एते चांश कला, कला मतलब अंशों के अंश, अंश को कला कहते हैं। Expansions of the partial expansions. तो वो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, ऐसे गोविंद का मैं पूजा करता हूँ। तो इस श्लोक में क्या होता है, भगवान कृष्ण ये महाविष्णु से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवद्गीता से स्पष्ट होता है। तो आगे वो अन्य भी शास्त्रों से वो वर्णन कर रहे हैं। गोपाल उपनि उपनिषद में सो 1.1 निम्न लिखित कथन है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिने नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिने। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनके उनको जान लेने का अर्थ है वेदों का जान लेना, अतः वे परम गुरु है। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्ण कृष्णो वै परम वे दैवतम, कृष्ण भगवान है। एको वशी सर्वगा कृष्ण ईड्यः, वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एकोपि संबुधा योगापाति, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों में तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। ये सब क्या सिद्ध कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ही मूल आदि भगवान है।
ब्रह्म संहिता में का कथन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वही आदि है अनादिरादिर गोविंद, उनके कोई आदि नहीं है, ऐसे बता रहे। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि है, वे समस्त कारणों के कारण है। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम परब्रह्मणराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम कृष्ण है और वे कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतारित होते हैं। इसी प्रकार भागवत में भगवान के सभी प्रकारों के अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं अभी तो साक्षात भगवान है। एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। कल इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो भगवद्गीता से प्रभुपाद और यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, इसी प्रकार भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, मत परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि बनाएव। मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया, अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवद्गीता ज्ञान प्राप्त करने के पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करते हैं, पर ब्रह्म परम दाम पवित्रम परम भगवान। अब मैं बलिभांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है, हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्वरूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता। और ऐसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन जैसे भक्तों के लिए ये विश्वरूप नहीं है। अगला श्लोक, मत कर्म मत, समझ में आ गया बीच में वो क्यों ये सभी इस तात्पर्य में ना, वो वेदों के अध्ययन के बारे में बोलते हैं, वो तपस्या एकादशी और जन्माष्टमी व्रत के बारे में बोलते हैं और ध्यान के बारे में बोलते हैं और पूजा अर्चा विग्रह का पूजा के बारे में बोलते हैं। वो पिछले श्लोक के संबंध में उन्हीं चीज़ों को हम लोग भक्ति भावना से करेंगे या शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति के संबंध में करेंगे तो भगवान को समझ सकते हैं। शुद्ध भक्ति के बिना भगवान को समझना मुश्किल है। श्लोक क्रमांक 55, मत कर्म मत, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरे शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो श्रील प्रभुपाद ये जो श्लोक है भगवद्गीता के सार है। तो जो व्यक्ति कोई चिन्मय योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। दिस इज द मंत्र फॉर दैट, इसके लिए मंत्र है ये। Take the secret. तो ये फॉर्मूला है, इसलिए क्या है, ये श्लोक भगवद्गीता का सार है। तो फिर उसके बाद में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं भगवद्गीता किन के लिए है, हम लोग चर्चा कर रहे थे उसका। भगवद्गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। तो और उद्देश्य को भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर चुके थे ना, दो उद्देश्य है भगवद्गीता का। उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। इस श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप में बताता है जिसे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद एक एक करके श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्या वर्णन करते हैं, मत कर्म क्या है, मत परह मतलब परम का अर्थ क्या है, मत भक्त का क्या अर्थ है, निर्वरय का क्या अर्थ है, संगवर्जित का क्या अर्थ है, यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो मत कर्म मतलब पूरा सभी जो कर्म है वो भगवान के लिए करना चाहिए पूरी तरह से। अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, उसको ही मत कर्म कहते हैं। तो अनासक्त होकर विषय वस्तु से या भौतिक जगत में जो भी हम लोग कर्म करते हैं उनसे अनासक्त होकर यथारम उपयुंजता और भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, लगा देना चाहिए सब कुछ। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे, आप बिजनेस कर रहे हैं तो भगवान के लिए बिजनेस करना चाहिए, इसका अर्थ है पूरा जो भी धन आता है वो भगवान को दे देना चाहिए, वो मत कर्म होता है। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सबके सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ अपने इंद्र तत्व के लिए और थोड़ा सा ऐसा सब कुछ देते उसको मत कर्म कहते हैं।
मत कर्म कृत
और क्या क्या उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो आप बहुत बड़ा क्या है एक इमारत बांधना चाहते हैं तो इससे अच्छा है कि भगवान के लिए एक मंदिर बनाना, तो उसको मत कर्म कहते हैं। या वो सेवा अर्चन केले वगैरह जो भी जरूरत है उसको व्यवस्था करना, उसको मत कर्म कहते हैं। तो ये सभी हम लोगों को समझना चाहिए कि मत कर्म कहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयशति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रेतात्मनः।
तो आप भगवान के लिए मंदिर बांध देंगे तो वहाँ पहले आपको रहने के